एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हूँ जो अपने लेखक की सबसे मशहूर किताब जितनी जानी मानी तो शायद नहीं है, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा बुनियादी है।
हाँ बिल्कुल।
यह है एडम स्मिथ की द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, यानी नैतिक भावनाओं का सिद्धांत। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर लोग एडम स्मिथ का नाम सुनते हैं तो फौरन द वेल्थ ऑफ नेशंस और अर्थशास्त्र का पिता, यही सब सोचते हैं।
हाँ बिल्कुल।
पर सच तो यह है, जैसा आपने कहा, कि अर्थशास्त्री बनने से पहले स्मिथ एक नैतिक दार्शनिक थे, और ये किताब नैतिक भावनाओं का सिद्धांत जो 1759 में छपी थी, वो उनके पूरे सोच की आप कह सकते हैं नींव है।
और कमाल की बात यह है कि ये कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, मतलब आज भी ये उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती है ना?
सही बात है।
ये उन बड़े सवालों से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, पर ये सही और गलत का फैसला हम करते कैसे हैं आखिर?
बिल्कुल
कहाँ से आती है हमारी ये नैतिकता की समझ?
बिल्कुल। और ये किताब इसी बात की गहराई में जाती है कि सहानुभूति, मतलब दूसरों के सुख दुख को महसूस करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है, और हमारी अंतरात्मा, हमारा जमीर, वो कैसे काम करते हैं।
अच्छा।
और इसके जवाब वो सिर्फ किताब ही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हम नेतृत्व कैसे करते हैं, लीडरशिप जिसे कहते हैं, सबके लिए बड़े काम के हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसी खजाने से कुछ मोती निकालने की।
चलिए, तो पहले इन मोतियों को पिरोने वाले यानी लेखक एडम स्मिथ, उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। 1723 से 1790 तक।
हाँ, एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे, उस दौर के जिसे स्कॉटिश ज्ञानोदय कहते हैं, उसके एक बहुत अहम विचारक थे।
हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में।
हाँ, तो जैसा हमने कहा, लोग उन्हें अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, पर उनकी शुरुआत नैतिक दर्शन से हुई। वो पहले एक मॉरल फिलोसोफर थे।
और ये समझना भी दिलचस्प है कि स्मिथ ये किताब लिखने के लिए इतने सही व्यक्ति क्यों थे? वो सिर्फ कमरे में बैठकर सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे, है ना?
बिल्कुल नहीं। वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में नैतिक दर्शन पढ़ाते थे, और उन्होंने इंसानी स्वभाव को, समाज के तौर तरीकों को बहुत गौर से देखा परखा था। मतलब एक ऑब्जर्वर थे वो।
अच्छा।
डेविड ह्यूम जैसे उस जमाने के और बड़े विचारकों से उनकी दोस्ती थी, और वो लगातार लोगों के बर्ताव, उनके आपसी रिश्तों का मानो अध्ययन करते रहते थे।
और शायद उनकी सबसे अनोखी बात यही थी कि उन्होंने कहा कि नैतिकता किसी भगवान के हुक्म या सिर्फ सूखे तर्क से नहीं आती,
सही,
बल्कि हमारी अपनी भावनाओं और समाज में हमारे मेल जोल से पैदा होती है। सोचिए, उस वक्त के लिए कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा।
बिल्कुल क्रांतिकारी। और यही नैतिक समझ उनके बाद के जो आर्थिक विचार हैं, उनको भी सही रोशनी में देखने में मदद करती है।
तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है? मतलब असल में ये किताब कहना क्या चाहती है?
असल में ये किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि नैतिकता की भावना हम इंसानों में स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली, कैसे पनपती है। ये सवाल पूछती है कि हम इंसान जो अक्सर पहले अपने भले का सोचते हैं, स्वहितैषी होते हैं, आखिर ऐसे नैतिक कायदे कानून कैसे बना लेते हैं जिनसे हम एक समाज में मिलजुल कर रह सकें।
और किताब का मुख्य तर्क वो क्या है?
मुख्य तर्क बड़ा सीधा और गहरा है। ये सब शुरू होता है हमारी सहानुभूति यानी सिंपथी की क्षमता से।
सिंपथी मतलब दया?
नहीं, स्मिथ के लिए सिंपथी सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी कल्पना की वो ताकत है जिससे हम खुद को दूसरे की जगह रखकर सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, चाहे वो खुशी हो या गम।
अच्छा, इमेजिनेशन का रोल है इसमें।
हाँ, बहुत बड़ा रोल है। और यही सहानुभूति हमारे नैतिक फैसलों और हमारी अंतरात्मा, जिसे स्मिथ एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, निष्पक्ष दर्शक या इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, उसकी बुनियाद बनती है।
निष्पक्ष दर्शक, ये नाम तो बड़ा रोचक है।
है ना? तो किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है हमारी निजी भावनाओं यानी सहानुभूति से, फिर ये बताती है कि हम दूसरों के कामों को कैसे आंकते हैं, क्या उनका बर्ताव ठीक है, मतलब प्रॉपर है, क्या वो तारीफ के काबिल हैं, मेरिट है उनमें, या सजा के, डीमेरिट। और आखिर में ये समझाती है कि हम खुद अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं, अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर के उस निष्पक्ष दर्शक को कैसे विकसित करते हैं।
तो इस पूरी यात्रा में कई अहम पड़ाव आते होंगे।
हाँ बिल्कुल। जैसे सहानुभूति तो है ही, फिर न्याय और भलाई में फर्क, खुद पर काबू पाना यानी सेल्फ कंट्रोल, पैसे और शोहरत का जो आकर्षण होता है, और समाज के रीति रिवाजों का असर, ये सब चीजें आती हैं।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये सहानुभूति वाली बात, ये वाकई में है क्या स्मिथ के लिए? आपने कहा सिर्फ दया नहीं है।
हाँ देखिए, ये सिर्फ किसी को रोते देखकर दुखी होना भर नहीं है, ये है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके ये समझना कि अगर हम उस व्यक्ति की जगह होते तो हमें कैसा महसूस होता।
अच्छा।
और फिर हम ये भी देखते हैं कि उस व्यक्ति की भावना, उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसका दुख क्या उस स्थिति के हिसाब से ठीक है, मतलब उचित है, प्रॉपर है, कहीं वो जरूरत से ज्यादा या कम तो नहीं महसूस कर रहा।
मतलब भावनाओं को भी जांचते हैं हम।
हाँ एक तरह से। और यही एक और दिलचस्प बात आती है, आपसी सहानुभूति की चाहत, म्यूचुअल सिंपैथी। हमें अच्छा लगता है जब कोई और भी वैसा ही महसूस करे जैसा हम कर रहे हैं, इससे एक जुड़ाव महसूस होता है ना?
हाँ ये तो होता है। तो ये हुई दूसरों की भावनाओं को समझने की बात, लेकिन हम उनके कामों को कैसे आंकते हैं? मतलब कौन सा काम तारीफ के लायक है और कौन सा सजा के?
यहां स्मिथ मिश्रित सहानुभूति यानी कंपाउंड सिंपैथी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ काम करने वाले के इरादे को नहीं देखते, बल्कि जिस पर उस काम का असर हुआ उसकी भावनाओं को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं।
जैसे उसकी शुक्रगुजारी या उसका गुस्सा।
अच्छा, दोनों तरफ से देखना पड़ता है।
हाँ।
अगर हम दोनों से सहानुभूति रख पाते हैं, मतलब इरादा भी ठीक लगता है और असर पाने वाले की भावनाएं भी जायज लगती हैं,
हाँ।
तो हम काम को तारीफ के लायक मानते हैं।
हाँ।
और यहीं पर स्मिथ न्याय जस्टिस और परोपकार बेनिफिसेंस के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
न्याय और परोपकार, इनमें क्या फर्क है?
न्याय का मतलब है दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना, ये बुनियादी जरूरत है, समाज इसके बिना चल ही नहीं सकता, इसे कानूनों के जरिए लागू करना पड़ता है।
अच्छा ये तो नेगेटिव ड्यूटी हुई, मतलब कुछ न करना।
हाँ एक तरह से नुकसान न पहुंचाना, जबकि परोपकार यानी भलाई करना वो दूसरों का अच्छा करना है। ये बहुत अच्छी बात है, समाज को सुंदर बनाती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती दयालु नहीं बना सकते, क्यों?
हाँ बात तो सही है।
स्मिथ का वो उदाहरण बड़ा सटीक है, न्याय समाज की नींव है जिसके बिना इमारत गिर जाएगी, जबकि परोपकार उस इमारत की सजावट है जो उसे खूबसूरत बनाती है, पर उसके टिके रहने के लिए एकदम जरूरी नहीं है।
ये फर्क आज भी कितना मायने रखता है ना? खैर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम खुद को आंकते हैं। आपने कहा था निष्पक्ष दर्शक, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, ये क्या है असल में?
ये असल में हमारी अंतरात्मा है, हमारा जमीर। स्मिथ कहते हैं कि हम समाज में रहते हुए धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसा दर्शक पैदा कर लेते हैं जो हमारे अपने कामों को बिना किसी तरफदारी के एकदम निष्पक्ष होकर देखता है, जैसे कोई बाहर वाला देख रहा हो।
अच्छा तो ये हमें सही गलत बताता है?
हाँ, और यही निष्पक्ष दर्शक हमें तब भी सही काम करने को कहता है जब हमें कोई दूसरा नहीं देख रहा होता।
पर क्या ये अंदर की आवाज हमेशा सही होती है? मतलब क्या ये हमारे अपने विचारों, हमारे पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं हो सकती?
ये बहुत अच्छा सवाल है। स्मिथ मानते थे कि ये निष्पक्ष दर्शक पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, ये समाज के रीति रिवाजों से, माहौल से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो ये भी मानते थे कि लगातार दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखकर और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके हम इसे बेहतर बना सकते हैं, इसे ट्रेन कर सकते हैं।
तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है।
बिल्कुल। और यहीं पर एक और बात आती है, सिर्फ दूसरों की तारीफ पाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा अहम है कि हम असल में तारीफ के काबिल हों, मतलब प्रेज़वर्थीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेज़।
वाह ये गहरी बात है।
हाँ, और इस अंदरूनी आवाज को सुनने और उसके हिसाब से चलने के लिए खुद पर काबू पाना यानी आत्मसंयम या सेल्फ कमांड बहुत जरूरी है।
और फिर एक और बड़ा दिलचस्प विचार आपने बताया था, पैसे और शोहरत का आकर्षण। इस पर स्मिथ क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ लालच है?
स्मिथ यहाँ थोड़ी अलग बात कहते हैं। वो मानते हैं कि हम अक्सर चीजों को सिर्फ उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी बनावट, उनकी फिटनेस, उनके डिजाइन की वजह से पसंद करते हैं। देखने में अच्छी लगती हैं चीजें।
अच्छा।
और इसी से जुड़ा है उनका वो मशहूर किस्सा गरीब आदमी के बेटे का। एक नौजवान सोचता है कि अमीर और ताकतवर लोग ज्यादा सुखी होते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी दौलत और रुतबा हासिल करने में लगा देता है, अपना चैन सुकून सब कुर्बान कर देता है। और बुढ़ापे में उसे एहसास होता है कि अरे ये सब चीजें उतनी खुशी तो नहीं देती जितना उसने सोचा था।
तो क्या ये सारी मेहनत बेकार गई? उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा?
स्मिथ कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर शायद ये एक धोखा है, एक भ्रम है जिसमें हम जीते हैं, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, समाज के लिए ये धोखा अनजाने में फायदेमंद साबित होता है।
वो कैसे?
यही दौलत और तरक्की पाने की चाहत लोगों को ज्यादा मेहनत करने, नई चीजें बनाने, व्यापार बढ़ाने के लिए उकसाती है। इससे आखिरकार पूरे समाज का भला होता है। ये उनके अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड वाले विचार का नैतिक पहलू है।
अच्छा, तो ये अदृश्य हाथ सिर्फ इकोनॉमी में नहीं नैतिकता में भी काम करता है।
हाँ, उनके हिसाब से तो करता है। कैसे निजी स्वार्थ अगर सही हद में हो तो समाज की भलाई कर सकता है। कमाल की बात है ना?
वाकई कमाल की बात है। तो हमने सहानुभूति, न्याय, निष्पक्ष दर्शक और इस महत्वाकांक्षा के अनोखे पहलू को समझा। अब अगर हमें इस पूरी किताब से कुछ मुख्य संदेश या सबक निकालने हों तो वो क्या होंगे, मोटी मोटी बातें?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि नैतिकता कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से, हमारी भावनाओं से, खासकर सहानुभूति से पैदा होती है। ये तर्क या नियमों से ज्यादा महसूस करने की बात है।
हाँ, जैसे हम कहते हैं, दिल से सोचना।
बिल्कुल, जैसे जब हम अपने किसी दोस्त को दुखी देखकर सच में उसका दर्द महसूस करते हैं, वो स्मिथ की सहानुभूति ही है।
ठीक है, दूसरा सबक?
दूसरा बड़ा सबक है ये निष्पक्ष दर्शक या अंतरात्मा का विकास। हम लगातार खुद को भी देख रहे होते हैं, आंक रहे होते हैं, ये अंदरूनी आवाज हमें सही रास्ते पर रखने में मदद करती है।
हाँ, जैसे जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें अंदर से बुरा लगता है, भले ही किसी ने देखा ना हो, ये वही निष्पक्ष दर्शक है जो हमें टोक रहा है ना?
बिल्कुल वही है। तीसरा अहम मुद्दा है न्याय और परोपकार का फर्क। समाज को चलाने के लिए न्याय यानी नियम कानून सबके लिए जरूरी है। परोपकार या भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता।
इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण?
सोचिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना न्याय है, सबके लिए जरूरी, लेकिन किसी अजनबी की सड़क पार करने में मदद करना परोपकार है, वो दिल से आता है, आप उसे कानून नहीं बना सकते।
समझ गई।
और चौथा कि नैतिकता अकेले कमरे में बैठकर नहीं सीखी जाती, ये एक सामाजिक चीज है। हम अपने आसपास के लोगों से, परिवार से, समाज से सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत। बच्चों को देखिए, वो बड़ों को देखकर ही तो सीखते हैं।
हाँ, ये तो है।
और पांचवा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो है स्वार्थ और समाज के हित का संतुलन। स्मिथ ये नहीं कहते कि स्वार्थ हमेशा बुरा है, बल्कि एक हद में रहकर नियमों के दायरे में अपना भला सोचना अनजाने में समाज का भी भला कर सकता है।
वो दुकानदार वाला उदाहरण?
हाँ बिल्कुल, जैसे कोई दुकानदार अच्छा सामान इसीलिए बेचता है ताकि ग्राहक दोबारा आए, इसमें उसका भी फायदा है और ग्राहक का भी। ये अदृश्य हाथ का नैतिक पक्ष है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो इन बातों को बहुत खूबसूरती से कहते हैं। क्या हम कुछ पर नजर डाल सकते हैं, कुछ कोट्स जैसा?
हाँ जरूर, कुछ विचार तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि इंसान चाहे कितना भी खुदगर्ज क्यों ना लगे, उसके अंदर दूसरों के दुख सुख में दिलचस्पी लेने की भावना होती ही है।
मतलब हम कितने भी सेल्फिश हों, दूसरों का दर्द हमें महसूस होता है।
हाँ, हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, भले हमें सीधे तौर पर उससे कुछ न मिले। ये दिखाता है कि सहानुभूति हमारे स्वभाव का, हमारे नेचर का हिस्सा है।
एक और विचार निष्पक्ष दर्शक से जुड़ा है ना?
हाँ, स्मिथ कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं और इरादों को सही से तभी समझ सकते हैं जब हम खुद को अपनी जगह से हटाकर थोड़ी दूरी से, जैसे कोई और देख रहा हो वैसे देखने की कोशिश करें। ये खुद को ईमानदारी से आंकने का तरीका है, सेल्फ रिफ्लेक्शन।
ये करना मुश्किल होता होगा।
होता है। और न्याय के बारे में उनकी वो बात कितनी दमदार है। वो कहते हैं, न्याय वो मुख्य खंबा है जो पूरी इमारत यानी समाज को संभाले रखता है। अगर इसे हटा दिया जाए तो इंसानी समाज का ये विशाल ढांचा पल भर में ढह जाएगा।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि समाज के बने रहने के लिए न्याय कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और वो अदृश्य हाथ वाली बात भी कि अमीर लोग अपनी दौलत से बेहतरीन चीजें चुनते हैं, लेकिन वो गरीबों से बस थोड़ा ही ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने स्वार्थ के बावजूद वो अपनी तरक्की का फायदा अनजाने में गरीबों के साथ भी बांटते हैं।
ये बताता है कि कैसे निजी महत्वाकांक्षा भी समाज के काम आ सकती है।
बिल्कुल,
अगर सिस्टम सही हो।
हाँ, एक तरह से ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और दिलचस्प लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें, इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है?
हाँ, ये जानना जरूरी है, क्या कर सकते हैं हम?
बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत फैसले लेते समय हम निष्पक्ष दर्शक वाले विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से पूछें, अगर कोई बाहरी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति मुझे ये करते हुए देखता तो वो क्या सोचता।
अच्छा, मतलब खुद को बाहर से देखना।
हाँ, इससे हमें अपने जज्बातों और पूर्वाग्रहों से हटकर सोचने में मदद मिल सकती है। ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाता है।
और रिश्तों में इसका क्या फायदा?
रिश्तों में सहानुभूति का अभ्यास बहुत काम आ सकता है। अगर हम सच में कोशिश करें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसका नजरिया क्या है, तो कितनी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं।
हाँ, बहस कम होगी, समझ बढ़ेगी।
बिल्कुल, कोशिश करें कि अगली बार जब किसी से मतभेद हो तो एक पल रुककर उसकी जगह खुद को रख के देखें, शायद नजरिया बदल जाए।
और लीडरशिप के लिए भी आपने कहा था कि ये जरूरी है।
हाँ, बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए या लोगों को मशीन समझे। स्मिथ सिस्टम के आदमी यानी मैन ऑफ सिस्टम की आलोचना करते हैं, जो लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह देखता है, जिन्हें वो अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकता है।
अच्छा,
एक अच्छा लीडर सहानुभूति रखता है, टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझता है, निष्पक्ष फैसले लेता है, वो लोगों को प्रेरित करता है, सिर्फ नियंत्रित नहीं।
और समाज में जो आजकल इतनी बहसें होती हैं, वहां भी ये सोच काम आ सकती है।
हाँ बिल्कुल, न्याय जो सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए और परोपकार जो व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है, इसके बीच का फर्क समझने से शायद हम बेहतर तरीके से बात कर सकें किन चीजों पर समाज को सख्ती करनी चाहिए और किन चीजों में लोगों को आजादी देनी चाहिए। इस पर सोचने में मदद मिलती है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो शायद यही है कि नैतिकता कोई आसमान से उतरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है।
हाँ, ये हमारी भावनाओं से, खासकर सहानुभूति से और समाज में हमारे अनुभवों से पनपती और विकसित होती है।
और निष्पक्ष दर्शक का विचार हमें खुद को बेहतर बनाने, अपनी अंतरात्मा को जगाए रखने का एक जरिया देता है। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी इस किताब में?
मेरे लिए शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि स्मिथ स्वार्थ को किस नज़रिए से देखते हैं। वो उसे पूरी तरह खारिज नहीं करते, बल्कि समाज को चलाने वाली एक ताकत का हिस्सा मानते हैं, बशर्ते वो सही दिशा में हो, सही नियमों के अंदर हो। ये नज़रिया काफ़ी संतुलित और यथार्थवादी लगता है।
हाँ, ये वाकई अलग है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहाँ हम अक्सर स्क्रीन के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, हमारी सहानुभूति और हमारे अंदर के निष्पक्ष दर्शक पर क्या असर पड़ रहा है?
ये बहुत अहम सवाल है।
क्या हम अब भी उतनी ही गहराई से दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाते हैं? क्या हमारा अंदरूनी नैतिक दिशा सूचक यंत्र, वो कंपास, ठीक से काम कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।